भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ऐश्वर्य वीर्य आदि षड्विध महेश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपि शारदोत्फुल्ल मल्लिका शारद्यः शरत्कालीनाश्च ता उत्फुल्ल मल्लिका यासु तास्तद्विधाः शारदीय प्रफुल्ल मल्लिकादि कुसुमावली परिशोभिता ताहा मयेमा अंशत क्षपा इति गोप कुमारीषु प्रतिश्रुताः रात्रि ही वीक्ष्य दृष्ट्वा योग मायाम निज अचिंत महाशक्तिम उपाश्रितः उप आधिक्येन आश्रितः प्रकटीकृतं सन् रन्तुं गोपरमणिभिः सह विहरतुः मनश्चक्रे संकल्पं कृतवान्। श्री बाजरायनी सुखदेव जी बोले कि ऐश्वर्य वीर्य आदि षड्विध महाशक्ति निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण मल्लिकादि विविध शारदीय कुसुम विकास से परिशोभित रात्रि को देखकर अपनी अचिंत शक्ति महाशक्ति को प्रकट करते हैं और गोप रमणियों के साथ रमन करने की इच्छा करते हैं। ये श्लोकार्थ है। तो इसमें श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी पर विचार करते समय ये मिलता है कि वे साक्षात मन्मथ मन्मथ हैं और आत्मा राम है। अतएव जो मन्मथ के भी मन्मथ हैं उनका कामासक्त होना संभव नहीं और जो आत्मा राम हैं उनको रमण के लिए गोपियों के साथ मिलने का कोई प्रयोजन नहीं। किंतु तो भी वे शत शत कोटि गोप रमणियों के साथ रास क्रीड़ा कर उन्होंने की है। इससे ऐसा मालूम होता है कि ये काम विजय की घोषणा है। तो श्रीधर स्वामी ने काम विजय की घोषणा का ही अर्थ लिया है कि काम विजय है, पर ऐसा मालूम होता है कि काम का यहां प्रवेश ही नहीं। भगवान के इस राज्य में काम का प्रवेश तो मन्मथ मन्मथ है। तो रासलीला में भगवान की प्रवृत्ति के आवरण में एक भगवान ने परानिवृत्ति की क्रीड़ा की है और उसका अधिकांश तत्व भगवान पितारात्रि ही इत्यादि श्लोक के पहले चरण में ही छिपा हुआ है। तो अब इस पर कुछ विचार करना चाहिए। तो भगवान ने रमन करने की इच्छा की, भगवान अपि रन्तु मनश्चक्रे, यही श्लोक का मूल प्रतिपाद्य है। तो इसको समझने के लिए पहले दो पदों को समझना है, भगवान और रमन। तो विष्णु पुराण में भगवत शब्द का अर्थ कहते हुए ये बताया गया कि यत्तद्व्यक्त नजर मचिंत मजम अक्षयम अनिर्देश मरूपंच पाणिपादाद्य संयुतम विभु सर्वगतम नित्यम भूत योनिम कारणम व्याप्या व्याप्यम यत सर्वम तद्वै पश्यन्ति सूरयः तद ब्रह्म परम धाम तद्धेयं मोक्ष कांक्षणां तदेतद् भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः वाचको भगवत् शब्दस् तस्याद्यस्याक्षरात्मनः। तो वेद के वचनों में अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अक्षय, अनिर्देश्य, प्राकृत रूप विहीन, प्राकृत करचरणादि विवर्जित, सर्वशक्तिमान, सर्वगत, नित्य, सर्वकारण, अकारण, सर्वव्यापी, परम महत और सर्व प्रकाशक वस्तु का जिससे उद्देश्य पाया जाता है और तत्वज्ञ व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष करते हैं वही वस्तु ब्रह्म है, अर्थात सर्वापेक्षा बृहत पर तत्व और स्वप्रकाश है। तो मोक्ष की आकांक्षा वाले व्यक्ति इसी वस्तु का सर्वदा ध्यान किया करते हैं। तो परमात्मा का जो इस प्रकार का स्वरूप है वो ये भगवत शब्द वाच्य है और उसी को आद्य अक्षर स्वरूप उसको भगवत शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवत शब्द वाच्य परमात्मा रूप वस्तु के स्वरूप का निर्देश करने के बाद भगवत शब्द का अर्थ करते हैं विष्णु पुराण। तो कुछ थोड़ा सा पाठ भेद है, किसी प्रति में मिलता है ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, शस्त्रीय ज्ञान वैराग्य योश्च शन्नाम भगी तीर्थता, और किसी किसी में वीर्य से की जगह धर्म से पाठ मिलता। तो ज्ञान शक्ति बलेश्वरीय वीर तेजों से शेषता भगवत शब्द वाचारी बिना हेर गुणादि भी परिपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये छह प्रकार की महाशक्तियों का नाम भग है। हे गुण अर्थात प्राकृत गुण संबंध विहीन है भगवान, परिपूर्ण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज ये भगवत शब्द वाच्य है। तो इससे ये समझ में आता है कि ऐश्वर्यादि षडविध महाशक्ति समन्वित जो सच्चिदानंद घन विग्रह है वो भगवान है। तो उन भगवान में जो सर्ववशीकारित्व शक्ति उसका नाम तो ऐश्वर्य है, सबको वश में कर लेने की जो शक्ति है उसका नाम ऐश्वर्य है। तो भगवान की इस ऐश्वर्य शक्ति के प्राकृत और अप्राकृत सभी प्रकार वस्तुएं अधीन है, वे किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनकी अधीनता छोड़कर स्वतंत्र भाव से कुछ भी करने में समर्थ हो, कि उनका ऐश्वर्य है। क्षुद्रतम धूलि कण से लेकर और सुमेरु पर्यंत, जल के बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, श्वास वायु से लेकर प्रलय के तूफान पर्यंत और छोटे से क्षुद्र जीवाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, अचेतन अथवा चेतन सारी वस्तुएं ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। अब दूसरा, श्री भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसका नाम वीर्य है। तो जगत में भी हम देखते हैं कि मणि मंत्र महौषधि इत्यादि के द्वारा विविध आश्चर्यमय कार्य होते हैं। चंद्रकांत मणि अगर पास हो तो अग्नि की दाहिका शक्ति हट जाती है। इस प्रकार मणियों से, मंत्रों से, मौषधियों से काम होते हैं। तो जब मणि मंत्रों में इतनी शक्ति है तो जो समस्त वस्तुओं के सृष्टिकर्ता हैं, इन सारी वस्तुओं की भी जो निर्माता हैं, उन भगवान की अचिंत शक्ति के संबंध में हम अनुमान कर सकते हैं। तो भगवान की लीला कथा पर विचार करते समय ये मानना चाहिए कि भगवान अचिंत शक्ति हैं, माने उनकी शक्ति का कोई भी सीमा यत्ता नहीं है। श्री कृष्ण की लीला में पूतनाबद्ध शकट भंजन गोवर्धन धारण इत्यादि उनकी अचिंत्य महाशक्ति का ही परिचय देते हैं। तो जो भगवान के अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं करते वे ही लोग भगवान की लीला को कोई रूपक बताते हैं, कोई प्रक्षिप्त बताते हैं, पर भगवान की कृपा से और महासौभाग्यवश जिनको भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास है वे ही लोग लीला कथा पर विचार करके परम आनंद सिंधु में निमग्न हो सकते हैं, अविश्वासी लोग नहीं। तो कहते हैं कि अनंत अनंत कल्याण गुण समुद्र कल्याण गुण के जो अनंत समुद्र हैं ऐसे भगवान के कायिक वाचिक मानसिक जितने भी लीला कार्य हैं वो सब के सब जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनकी कोई लीला प्रारंभ में देखने पर अहित कर दिखने पर भी परिणाम में कल्याणकारी होती है। श्री भगवान का पूतना अघासुर इत्यादि का वध दिखता है कि ये दंड विधान है प्रत्यक्ष, परंतु हुआ क्या, सदा के लिए उनको संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई, परम कल्याण हो गया, दिखा उनका वध। उन्हें भी मालूम हुआ कि हमें हमको भगवान ने मारा, परंतु उनका अशेष कल्याण हो गया, सदा के लिए मुक्त हो गए। तो भगवान की कोई भी कायिक वाचिक मानसिक लीला देखने में चाहे कैसी मालूम हो वो है कल्याणकारी, ये है भगवान का यश। वो पहले ऐश वो आया ऐश्वर्य आया वीर आया अब ये रहे यश। तो और भगवान का ध्यान, भगवान के पार्षद, भगवान की लीला, भगवान का श्री विग्रह, ये सभी महान संपत्ति से परिपूर्ण है। तो इस ये जो महान संपद है इसी का नाम श्री है। भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की स्वप्रकाशता इसका नाम ज्ञान है। और सब प्रकार की माइक वस्तुओं में भगवान की नित्य सहज अनासक्ति यही वैराग्य है। तो ये जो छह महाशक्तियां हैं इन्हीं का नाम भग है। तो सच्चिदानंद घन विग्रह है भगवान में ये महाशक्तियां नित्य स्वरूपगत अवस्थान करती हैं, इसीलिए इनका नाम भगवान है। तो ये ऐश्वर्य आदि छह प्रकार की महाशक्तियों के घर निकेतन ये सच्चिदानंदमय भगवान एक होते पर भी एक होने पर भी इनकी अनंत लीला होती है। इसीलिए श्रुतियां कहती हैं एकोपिसन बहुधा यो विभाति, एक ही भगवान बहुत रूप होकर के लीला करते हैं। तो इसलिए लीला का भेद है और लीला के भेद से इनका तीन नामों से निर्देश किया भागवत ने, वदंती तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमदेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तो सजाती विजाती और स्वगत इन तीन प्रकार से भेदों से रहित अद्वय सच्चिदानंद वस्तु को ही तत्त्वविद परतत्व मानते। इस परतत्व के तीन नाम हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये इनके तीन लीला प्रकाश हैं एक ही वस्तु के। तो भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णित रासलीला के भगवान कृष्ण गोविंद इत्यादि नाम जो हैं, ये इन रास बिहारी के परतत्व का ही परिचय देते हैं। तो इससे जो भगवान की भगवत्ता है वो जाहिर होती, क्यों कि भगवान ने रमण करने की इच्छा की, ब्रह्म ने रमण करने की इच्छा की, परमात्मा रमण करने की इच्छा की, ये नहीं आया। तो ये भगवान के जो तीन नाम है परात्पर ब्रह्म के, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, पर यहां भागवतकार भगवान अपि कहते हैं, तो यहां भगवान का वर्णन है ब्रह्म और परमात्मा का नहीं, एक ही तत्व है। तो ये जो वर्णन है ये ब्रह्म और परमात्मा का नहीं है, भगवान का वर्णन है। श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि नाम जो रास पंचाध्याय में आते हैं ये भगवान के लिए ही आते हैं। और प्रसंगतः है ये प्रश्न भी है महाराज परीक्षित का, कृष्णम विदु परम कांतम मित ब्रह्मतया मुने। गोपियों ने श्री कृष्ण को कांत समझ के ही जाना, ब्रह्म रूप में अनुभव नहीं किया। और विशुद्ध अनुराग में ये आवश्यक है कि वहां पर ऐश्वर्य का विकास प्रकाश नहीं रह सकता। तो भगवान की रासलीला के वर्णन के अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि भाई गोपी, गोपियों के पति और समस्त जीवों के अंतर में जो अंतर्यामी रूप से अवस्थित हैं वे ही लीला विग्रह में अवतीर्ण होकर गोपियों को दिखाई दिए और उन्हीं से गोपियों का विविध विहार हुआ। इससे जाना जाता है कि ब्रह्म किंबा परमात्मा के साथ रास क्रीड़ा नामक का स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। पर स्वरूपतः भेद न होने पर भी गोपियों को ब्रह्म या परम हुआ। सुतराम इस लीला के साथ ब्रह्म और परमात्मा का कोई संबंध नहीं। एक होने पर भी ऐश्वर्य वीर्यादि षडविध महाशक्ति निकेतन जो सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान है वो इस लीला के नायक हैं। लीला में नायक होना चाहिए। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। इस श्लोकांश के द्वारा कोई ये अर्थ करे कि ब्रह्म किंबा परमात्मा का जीव चैतन्य के साथ मिलन है और उसका ये वर्णन रासलीला का, तो कहते हैं कि ये तात्पर्य ठीक नहीं समझा गया। तो ये भगवान का वर्णन है। श्री भगवान स्वरूपतः भगवान की बात है। श्री भगवान स्वरूपतः एक होने पर भी ब्रह्म परमात्मा की बात तो आ गई। अब भगवान के अलग अलग भेद हैं। श्री भगवान स्वरूपतः एक होने पर भी एकमेवा द्वितीयम सिद्धांत है। उनकी लीला की अनंतता से, उनके श्री विग्रहों की लीला की अनंतता सर्वशास्त्र सिद्ध है। मत्स्य कूर्म बाराह नृसिंह राम नारायण आदि जो अनंत मूर्तियां हैं ये भगवान की ही मूर्तियां हैं और ये अनंत लीला करते हैं। तो रासलीला उन अनंत लीलाओं में अन्यतम लीला है और इसमें नव किशोर नटवर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति में ही इन अनंत मूर्तियों में अन्यतम है। ब्रह्म और परमात्मा के साथ जैसे भगवान का स्वरूप भेद जरा भी न होने पर भी आविर्भाव भेद है, लीला भेद है, इसी प्रकार मत्स्य कूर्मा आदि के साथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप भेद जरा भी न होने पर भी लीला भेद से आकृति भेद है। अनंत प्रकाश कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वस्त्र वर्ण भेद नाम विभेद। तो श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला वर्णन के प्रकरण में ही रास लीला का वर्णन है। योगेश्वरेण कष्टेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। इस प्रकार से रासलीला के सौष्ठव का प्रदर्शन किया गया। तो ये भी धारणा रखनी चाहिए यहां पर कि वही भगवान मत्स्य कूर्मादि अनंत रूपों में अनंत लीला करने पर भी रासलीला किए कृष्ण रूप से ही और रूपों में नहीं। तो रासलीला को यदि कोई 64 योगिनियों की लीला कहे, काली का नृत्य कहे और भूत प्रेत पिशाच परमथादि के साथ महादेव का नाच कहे, रावण ये हनुमान और जांबवान इत्यादि का रावण वध के पास बाद ये जय उल्लास रामचंद्र का नृत्य कहे, तो भले ही कहे पर युक्त संगत बात नहीं। तो न तो ये ब्रह्म के साथ जीव का मिलन है, न ये ब्रह्म और परमात्मा का विषय है, ये भगवान का विषय है और भगवान में भी श्री कृष्ण रूप का विषय है। यहां तक ये सिद्ध किया। तो कहते हैं कि मणि ये मत्स्य कूर्म बरा नृसिंह राम नारायण कृष्ण इनमें भेद नहीं है। ये फिर ध्यान में रखें, इनमें भगवान का प्रकाश भेद मात्र है। मनिर यथा विभाग्य नील पीतादि फिर युतः रूप भेदम वाप्नोति ध्यान भेदो तथा च्युतः। ये नारद पंचरात्र का श्लोक कि जैसे एक ही वैदूर्य मणि नील पीतादि वर्ण विशिष्ट रूप में अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूप में दिखती, इसी प्रकार एक ही भगवान विभिन्न साधकों को विभिन्न भावना से विभिन्न लीला समन्वित विभिन्न मूर्तियों में प्रकाशित दिख पड़ते हैं। तो इसमें रूप भेद न करें, लीला भेद है। तो ये जो लीला भेद है ये साधक की साधना, प्रेमी का प्रेम और लीलामय की लीला विचित्रता, इसकी अभिव्यक्ति है। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इस श्लोकांश को देखने पर ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने रमण की इच्छा की। फिर कहते हैं कि भगवान की किसी भी लीला का तात्पर्य यदि खोजने जाए, रसास्वादन में अगर हमारी प्रवृत्ति हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सच्चिदानंद सिंधु जो श्री भगवान हैं, वो निरंतर अनंत लीला तरंगों से तरंगायित हैं। मने ये जो सच्चिदानंद सिंधु जो भगवान हैं, निरंतर इसमें अनंत लीला की तरंगें उठती रहती हैं। इनमें जो जिस तरंग में डूबना चाहे उसके लिए उसी का अनुसंधान करना चाहिए। मत्स्य कूर्म बारह नृसिंहादि ये सभी भगवान के लीला विग्रह हैं एक ही, और इन सारी मूर्तियों में स्वरूप भेद कोई न होने पर भी ऐश्वर्य वीर्यादि शक्ति के प्रकाश में लीला भेद से तारतम्य होने के कारण से ही इनका तात्विक लोग अंश पूर्ण कला आदि नाम रखते हैं, स्वरूप में भेद नहीं। तो भगवान के मत्स्य कूर्मादि अनंत मूर्तियों में स्वरूपतः भेद न होने पर भी श्री भगवान उन मूर्तियों में जो लीला करते अन्य में नहीं करते। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि वहां जो लीलाएं होती हैं वो लीला सीमित होती है, भगवान में सीमा नहीं है, भगवान की पूर्णता में भेद नहीं है, स्वरूप में भेद नहीं है, पर लीला विकास में भेद इसलिए एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं कला का अर्थ उनकी पूर्णता में कमी नहीं है। तो ये भगवान के जो मत्स्य कूर्मा आदि अवतार समूह है इसीलिए भगवान के अंशावतार कला अवतार ऐसे माने जाते हैं। और भगवान का जो श्री कृष्ण विग्रह है ये स्वयं परिपूर्ण है। तो भगवान जब मत्स्य कूर्मा आदि लीला करते हैं तब उनके परिपूर्ण ऐश्वर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उनमें है नहीं सो बात नहीं है। भाई एक आदमी एक मन बोझ उठा सकता है तो बोझ दो शेरी है तो दो से उठाता हुआ दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक मन ही उठा सकता तो इसी प्रकार से वहां पर परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य वीर्यादि शक्तियों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। पर जब श्री कृष्ण रूप में लीला करते हैं भगवान तब उनकी सारी शक्तियों का प्रकाश होता है, इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्णस्व भगवान स्वयं। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे, इस पर अगर निरपेक्ष भाव से समालोचना की जाए तो ये बात ठीक ध्यान में आती है कि लीला प्रकरण भगवान की अनंत मूर्तियों के तारतम्य से ये भी ज्ञानी के ज्ञान साधन से निर्विशेष ब्रह्म रूप की अनुभूति होती है, योगी के योग साधन से परमात्मा रूप की अभिव्यक्ति होती है और भक्तों के भक्ति साधन से वही भगवान भगवत रूप से प्रकाशित होते हैं। जो मत्स्य कूर्मादि अनंत मूर्तियों में अनंत लीला करते हैं वही भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वयं श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की। तो इसका यह दिखाया कि ब्रह्म परमात्मा और अनंत अवतार स्वरूप इनमें तत्वतः स्वरूपतः भेद नहीं, इच्छा उन्होंने ही की पर उनमें इच्छा है नहीं। तो ये भगवान शब्द इसीलिए आया कि ब्रह्म से और परमात्मा से और अन्य अवतारों से भी इसका अलग कर दे कि भगवान कृष्ण से भगवान स्वयं, यहां जो भगवान है वो कृष्ण के लिए है। तो अन्य अवतारों से भेद, ब्रह्म परमात्मा से भेद, स्वरूपतः भेद नहीं। तो भगवान अपि तारात्री, इन श्लोकों में भगवान शब्द की पर विचार करने से पूर्वोक्त युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि यहां पर श्री कृष्ण ही भगवान शब्द वाच्य है। ये सिद्ध किया इन्होंने कि ये भगवान से श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि ये यही श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ज्ञान और योग साधना की सिद्ध दशा में ज्ञानी और योगियों को निर्मल निश्चल चित्त वृत्ति के द्वारा ब्रह्म और परमात्मा रूप से प्रकाशित होते और यही भगवान मत्स्य कूर्म नृसिंह राम नारायण आदि मूर्ति आविर्भूत होकर विविध लीला स्वादन करते हैं। तथापि सर्व लीला मुकुट मणि रास लीला ये उनकी कृष्ण मूर्ति में अनुष्ठित होती है और मूर्तियों में नहीं, ये लीला इनकी इन इस मूर्ति का निजस्व है। मैंने रास लीला श्री कृष्ण विग्रह का ये निजस्व है, अपनी चीज है और मूर्तियों में षड्विध शक्ति रहने पर भी इस लीला का विकास नहीं। तो अब फिर कहते हैं कि यहां पर इन छह महाशक्तियों का पूर्ण विकास है। तो ये बड़ी सुंदर बात दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मत्स्य कूर्मा लीला में क्या भेद दिखाते हैं कि भगवान मत्स्य कूर्मा आदि सब मूर्तियों में भगवान की जो वशीकारत्व शक्ति है इसका विकास है, पर सर्वशिकारत्व का विकास नहीं। वशिकारत्व तो है पर सर्वशिकारत्व नहीं, तो सर्वशिकारत्व क्यों नहीं, क्या भेद रह गया? तो कहते हैं कि उन मूर्तियों में भगवान ने इस दूसरे सब को निज वश में किया है और अपने किसी वश में नहीं हुए, औरों को वश में किया, स्वयं वशीभूत नहीं हुए। तो उन लीलाओं में अपने को छोड़कर सबको वश में किया है